आन्या के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छाई थी। अन्वय अपनी गहरी निगाहें उस पर टिकाए खड़ा था। हालांकि उसने आन्या पर गुस्सा करके उसे चुप रहने को कहा था, पर उसकी खामोशी अब उसे खल रही थी। एक दिन ही हुआ था दोनों को साथ में, पर उसके साथ रहकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबा साथ रहा हो उनका। उसकी बकबक की शायद अन्वय को आदत हो गई थी, पर उनकी बहस के बाद से वो एकदम खामोश थी। उसकी खामोशी अन्वय को चुभ रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, खामोशी से आन्या को देखता रहा। आन्या वेलिंग पकड़े खड़ी थी, आसमान को अपनी चांदनी से रोशन करते चांद और काले आकाश में झिलमिलाते सैकड़ों तारों को देख रही थी। कुछ देर उसे देखने के बाद अन्वय भी बालकनी में आया और उससे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ देर खामोश रहने के बाद भी जब ना तो आन्या ने उसकी ओर निगाहें घुमाई, ना ही एक शब्द कहा, तो आखिर में अन्वय ने उससे सवाल किया। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्वय को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई और अब उसे आन्या पर गुस्सा आने लगा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अन्वय ने हल्के गुस्से से कहा, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ पूछ रहा हूं मैं। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरी बात सुनकर भी अनसुना करें, पूछने पर जवाब ना दे। आपको तो मेरी तरह बोलने वाले लोग भी नहीं पसंद। आन्या की उदासी से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी तो अन्वय के भाव कुछ कोमल हो गए। उसकी आवाज में भारीपन महसूस करते हुए अन्वय ने आराम से कहा, फालतू की बकवास करने से मना किया था मैंने तुम्हें। ये नहीं कहा था कि मुंह को फेविकॉल लगाकर चिपका लो ताकि काम की बात भी ना कह सको। फेविकॉल से मुंह नहीं चिपकता, आन्या ने उसकी ओर निगाहें घुमाते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर अन्वय ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, देखा फिर हो गई ना तुम्हारी बकवास शुरू, काम की बात तो तुम्हारे मुंह से निकलती नहीं है, बकवास जितनी मर्जी करवा लो। मैं नहीं आई थी आपसे बात करने, आप आए थे यहाँ, मैं तो खामोशी खड़ी थी, आन्या ने तुनकते हुए जवाब दिया और बदले में उसे घूरने लगी। अन्वय भी उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की सख्त जरूरत है। मुझे नहीं है पर आपको जरूरत है, पहले खुद से मुझे चुप रहने को कह रहे थे, जब मैं चुप हो गई तो खुद ही मुझसे बात करने आए, और अब जब मैं बोल रही हूँ तो मुझ पर ऐसे भड़क रहे हैं जैसे मैंने आपकी कौन सी जायदाद ही चोरी कर ली है। वैसे तुम ना तमीज के लायक हो नहीं, इसलिए आप नहीं तुम ही कहूंगी तुम्हें। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा सड़ा हुआ चेहरा देखकर अपना मूड खराब नहीं करना है, मुझे अकेले इस पल को जीना है। आन्या ने उसे घूरा और सामने देखने लगी। उसकी बातें सुनकर अन्वय हैरानी से उसे देखने लगा था। उसकी बदतमीजी देखकर उसने गुस्से से कहा, तुम ना चुप्पी अच्छी लगती हो, जब मुंह खोलती हो तो कुछ ना कुछ बकवास ही निकलता है तुम्हारे मुंह से। आगे से मेरे सामने अपना मुंह मत खोलना वरना फेविक्विक से दोनों होठों को चिपका दूंगा, उसके बाद दोबारा कभी मुंह भी नहीं खोल पाओगी। आन्या ने उसकी बात सुनकर बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए कहा, देते रहो धमकी, मैं नहीं डरने वाली, तुम कभी मेरे होठों को नहीं चिपका सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी और भूख से मर जाऊंगी, तो उसका इल्जाम तुम्हारे सर पर आएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। हाँ गुस्सा कर सकते हो, चिल्ला सकते हो जैसे मिसेस सिन्हा करती थीं, वो तो मारती भी थीं, पर तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम उनकी तरह बुरे नहीं होना। इसलिए अन्वय उसकी बातों में खोसा गया था। जब जब वो मिसेस सिन्हा मतलब अपनी माँ का जिक्र करती थी, अन्वय को एहसास होता था कि कितनी मुश्किल जिंदगी जी है उसने, फिर भी इतनी जिंदा दिल है, ये हैरानी की बात थी उसके लिए। आन्या अपनी बात कहकर चुप हो गई और लबों पर हल्की मुस्कान सजाकर आगे बोली, पता है मुझे रात का अंधेरा बहुत पसंद है, ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई बहुत गहरा रिश्ता है रात के इस अंधेरे से, इन चांद सितारों से। अलग ही सुकून मिलता है मुझे जब मैं रात के अंधेरे में इन चांद सितारों को देखती हूँ, ये कैसे अपनी रोशनी से रात के अंधेरे को मिटा देते हैं, जैसे जुगनू होते हैं वे अपनी रोशनी से अंधेरे को मिटाने की कोशिश करते हैं। काश ऐसा एक सितारा, ऐसा एक जुगनू मेरी जिंदगी में भी आ जाए और अपनी रोशनी से मेरी जिंदगी के स्याह अंधेरे को मिटा दे, मुझे इन अंधेरों से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां सिर्फ प्यार का उजाला हो, कोई नफरत कोई दर्द ना हो, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। जब मैं खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि खुद को इस अदृश्य पिंजरे से आज़ाद करके खुले आसमान में उड़ूं, आकाश की ऊंचाइयों को छूं। मैंने हमेशा से एक सुकून भरी जिंदगी चाही है जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक आ गई, पर यहाँ भी वही बंदिशें वही रोक टोक, फर्क बस इतना है वहाँ मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा मेरी जिंदगी को कंट्रोल करते थे, मुझे अपने हिसाब से चलने पर मजबूर करते थे, यहाँ तुम मुझे अपने बनाए नियमों के दायरों में बांधना चाहते हो। मैं खुलकर हंसना चाहती हूँ, छोटी छोटी बात पर मुस्कुराना चाहती हूँ, दुखी होने पर रोना चाहती हूँ, अपनी बकबक पर खिलखिलाना चाहती हूँ, अपने दिल की बातों को दर्द को किसी अपने से बांटना चाहती हूँ, अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे ये रोक टोक जरा भी नहीं पसंद, सब मुझे समझाते हैं, मुझ पर हुक्म चलाते हैं, आन्या ये नहीं करना, आन्या अगर सादा मुंह चलाया तो मुंह जला दूंगी तेरा, आन्या यहाँ नहीं बैठना, आन्या ऐसे नहीं रहना, आन्या तू वही करेगी जो मैं कहूँगी, आन्या यहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, इसके साथ ही रहना है।
मेरी जिंदगी उनके हाथ की कठपुतली बन गई थी। उनके इशारों पर चलते चलते मैं थक गई हूँ। तुम भी मुझे अपने इशारों पर चलाना चाहते हो? तुम कहते हो अगर बोलूंगी तो मुंह चिपका दोगे मेरे, चार्ज लोगे मुझसे, ये मत छुओ, ये मत करो। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। मैं किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे भैया से बात करने गई थी। यहाँ आई तो चीजें गंदी देखी तो साफ कर दी। तुमने एक अनजान होते हुए मेरे लिए इतना किया तो मैंने भी तुम्हारी थोड़ी मदद करने के लिए तुम्हारे कपड़ों को धो दिया, पर बदले में तुमने मुझ पर इतना गुस्सा किया। मुझे तुम्हारे चिल्लाने का जरा भी बुरा नहीं लगा, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने मुझे तुम्हारी हर चीज से दूर रहने को कहा। मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तुम्हारी चीजों को चुरा लूंगी। अगर हम साथ में एक घर में रह रहे हैं तो उसके कामों की जिम्मेदारियों को भी दोनों को आपस में बांटना चाहिए ना। तुम सब करो और मैं बस देखती रहूं, ये नहीं होगा मुझसे। अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद तो मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना, कोई तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देगा। तुम्हारे शर्तों के हिसाब से नहीं चल सकती मैं। अगर मेरा मन करेगा तो मैं बोलूंगी, यहाँ रहूंगी तो काम भी करूंगी, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी मुझे। वरना कल को तुम भी मुझे बोझ समझकर किसी के हाथ बेच दोगे, जैसे मिसेस सिन्हा कर रही थी। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी मैं। आनिया की आंखों में नमी तैर गई थी, पर उसने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही जब्त कर लिया, जैसे सालों से करती आ रही थी, और अंदर जाकर अपनी जगह पर लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बेचैनी महसूस हो रही थी तो उसने अपना बैग खोला और एक डायरी निकालकर और पेंसिल लेकर स्केच करने लगी। अन्वय बाहर ही खड़ा उसकी बातों के बारे में सोचता रहा। उसके कानों में आनिया की आवाजें, उसकी कही बातें गूंज रही थीं। कहीं ना कहीं अन्वय को अब एहसास हो रहा था कि अनजाने में उसने भी उसे दुख पहुंचाया है। उसके साथ वही सुलूक कर रहा है जो उसके घर में उसके साथ होता था, जिसके कारण वो अपने घर से भाग कर आई थी।
वो वहां खड़े खड़े यही सोचता रहा। लगभग चार घंटे बीत गए। उसके बाद वो अंदर गया तो आनिया सो गई थी। वो पेट के बल लेटी हुई थी, तकिए पर चेहरा लुढ़का हुआ था, सीधे हाथ की उंगलियों में पेंसिल फंसी हुई थी और हाथ के पास ही एक डायरी खुली पड़ी थी। अन्वय ने आगे बढ़कर डायरी पर नजर डाली तो उस पर जंगल का स्केच बना हुआ था। पेड़ के पीछे से बाहर आई वो काली परछाई, उसकी डरावनी आंखें और बाहर आते दांत। आनिया ने उसी लम्हे को कागज पर उतारा था जब जंगल में अचानक ही वो वैम्पायर उसके सामने आ गया था और वो डरकर बेहोश हो गई थी। उस स्केच को देखकर अन्वय की आंखें गहरी हो गईं। उसने आनिया को देखा जो हर बात से बेखबर सुकून से सो रही थी। अन्वय ने बैठते हुए उसके माथे पर अपने अंगूठे को रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके साथ ही वो वापस उसी जंगल में चला गया, उसी झील के पास जहां उस रोज आनिया नहा रही थी। आनिया शायद सपने में वही देख रही थी। कुछ देर बाद अन्वय ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और अचरज से आनिया को देखा। इस बार उन नीली आंखों को देखकर वो डरी नहीं थी, बड़े प्यार से उसे निहार रही थी। यही देखकर अन्वय ने अपनी आंखें खोल दी थीं। वो हैरान परेशान सा अपने सामने लेटे उस लड़की को देखने लगा जो उसकी परेशानी की वजह थी और इस वक्त सुकून की नींद में सो रही थी। अन्वय ने कुछ सोचकर वो डायरी उठा ली और शुरू से देखने लगा। डायरी में बहुत से स्केच थे, ऐसे ही अजीब गरीब स्केच। कहीं एक लड़की अकेली खड़ी थी तो कभी एक लड़के के साथ जंगल में थे, कभी उससे लड़ते हुए तो कभी वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, कभी झगड़ रहे थे तो कभी बात कर रहे थे। बहुत सी तस्वीरें बनी थीं। अन्वय उन्हें गौर से देखने लगा। उन्हें देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन तस्वीरों में उसने पहले कहीं देखा है या इन लम्हों को उसने जिया हुआ है पहले कभी। ये हुआ है? अन्वय अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने डायरी वापस वैसे ही रखी और वापस बैल्कनी में चला गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पल में वहां से गायब हो गया। कुछ ही पल बाद वो उसी जंगल में था जिसको आनिया ने ड्रॉ किया था। उसी झरने के पास बैठा वो आनिया के बारे में सोचने लगा। एक चौड़ी आंखें थी जो उसी पर टिकी हुई थी। अन्वय की आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब आनिया उसे देखकर डरकर बेहोश हो गई थी और वो उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके घर छोड़ आया था। उसे अच्छे से याद था, उसने आनिया की यादों से उस पल को मिटाया था जब वो उसके सामने आया था। पर आनिया कुछ नहीं भूली थी, उसे तब तक की सारी बात याद थी। उसने हर पल को अपनी डायरी में स्केच के रूप में उतार दिया था। उसका जंगल में पहुंचना, परछाई से भागते हुए दलदल में गिरना, एक अदृश्य शख्स का उसे बाहर निकालना, झरने में नहाना, उसके बाद उस परछाई का सामने आना, कुछ भी तो नहीं भूली थी वो। अन्वय हैरान था। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से ही कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसकी मेमोरी को इरेज किया था, फिर उसे सब याद कैसे है? उन स्केचेस को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैंने वो सब पहले भी देखा है? उन लम्हों का हिस्सा रहा हूं मैं भी? ये लड़की इतनी रहस्यमयी क्यों है? पहली मुलाकात में ही उसे देखकर दिल जोरों से धड़क उठा, जैसे पहले से जानता हो। उसकी करीबी में वो सुकून था जैसे लंबे वक्त से इसी सुकून की तलाश हो उसे। बिछड़कर फिर से एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। साथ नहीं रहना चाहता उसके, पर तकदीर ने ऐसा खेल खेला है, चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा। उसका दर्द अपना सा लगता है, उसकी खामोशी अजीब से सोनेपन का एहसास करवाती है। हो क्या रहा है मेरे साथ? वो एक आम इंसान है, उसके लिए ये भावनाएं ठीक नहीं है। तुझे उससे दूर रहना ही होगा, कुछ भी करके जल्दी से जल्दी उसे खुद से दूर करना ही होगा। ऐसा ना हो तेरी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाए। अन्वय खुद से ही बातें करता रहा और वो साया उसकी हर बात को सुनता रहा। अन्वय कुछ दो घंटे बाद वहां से वापस चला गया। उसके साथ ही वो साया भी गायब हो गया। टू बी कंटिन्यूड।